नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी इसके फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये हमारी विशेष प्रस्तुति है। नाम है इसका बी द चेंज सीरीज। पिछले लगभग 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से दोस्तों हम एक दूसरे से मिलते आ रहे हैं और इस लंबे सफर में हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, एक दूसरे के सवालों के लिए जवाब खोजे हैं। ऐसी परिस्थितियां जहां पर हमारे सामने आई हैं, जो बदलाव का समय आया है, वहां पर हमने एक दूसरे की मदद करनी भी ठानी है और इस सफर में हम एक दूसरे के जितने सहयोगी बने हैं, ब्रह्मा कुमारी ने भी एक छोटी सी पहल यही की है कि इन मुश्किल घड़ियों में, टेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टाइम्स में, अगर आपको स्पिरिचुअल विजडम और गाइडेंस की आवश्यकता पड़ी है, कुछ इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी है, तो वो हम ऑफर कर सकें। और ऐसे में आप सब लोगों ने दिल खोल कर हमारे साथ अपनी बातें शेयर की हैं और इसके लिए हमारे ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने जो मास्टर ऑफ मेडिटेशन बनकर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें मार्गदर्शन प्रोवाइड करते आए हैं, तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं जिन्होंने अनेकों दशकों तक ब्रह्मा कुमारी के सेवाओं में नेतृत्व की भूमिका निभाई है और निभा रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय संतोष दीदी जी हैं जो ब्रह्मा कुमारी के महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सेवाओं के प्रभारी हैं। दीदी जी इन सभी सेवाओं की निदेशिका होते हुए भी आध्यात्म की एक गहती पकड़, प्रखर वाणी और स्पष्ट वक्तव्य के लिए जानी जाती हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज इंडिपेंडेंस डे के इस उपलक्ष्य में एक स्पेशल डे पर दीदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं स्वागत करता हूं संतोष दीदी जी का हमारे बीच। दीदी जी वेलकम।
ओम शांति। मुझे भी बहुत खुशी है आज विशेष इंडिपेंडेंस डे के दिन हम आपस में मिले, जरूर एक दो से सवाल जवाब करके अपने मन में जो भी प्रश्न हुए उनको हम क्लियर कर सकते हैं और एक दो का मार्गदर्शन दे सकते हैं। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमारे से सीखेंगे। बोलिए
जी। थैंक यू दीदी, ये तो आपकी ह्यूमिलिटी है जो आप ऐसा कहते हैं, मगर हम सब आपसे सीखने के लिए यहाँ आज जुड़े हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त प्रोग्राम में लाइव आएंगे, तो दोस्तों जो आप लोग प्रोग्राम लाइव देखना शुरू कर चुके हैं उन सभी लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नों को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप इन कीजिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, किसी सोशल मीडिया हैंडल पर जहां पर आप देख रहे हैं, और वहां से प्रश्नों को हम सीधे लाइव फीड में लेंगे और दीदी जी से प्रश्न पूछेंगे। अगर आप कोई शाउट आउट देना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ ये शेयर करना चाहते हैं कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वहां से आप लाइव फीड में इन चीजों को देख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे पहले मित्र हैं नरेंद्र पाहुने जी। नरेंद्र हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, हम अभी भी कई सारी पाबंदियों में जी रहे हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, यह मत करो, वो मत करो, और कोरोना ने तो और ही माहौल बिगाड़ दिया है, ऐसे में स्वतंत्र कैसे महसूस करें? सच्ची स्वतंत्रता क्या है दीदी जी? ऐसा नरेंद्र पूछते हैं।
नरेंद्र भाई, हम लोग फिजिकल तो वैसे स्वतंत्र हुए, परंतु अगर इंटरनल देखा जावे तो आज कोई भी मनुष्य स्वतंत्र नहीं। कोई अपनी आदतों के कारण परतंत्र है, कोई व्यसनों के कारण परतंत्र है, कोई परिस्थितियों के कारण परतंत्र है, कोई संबंधों के कारण परतंत्र है। परतंत्र का बहुत बड़ा जाल है और जिसके कारण आज मनुष्य अपने को रिलैक्स नहीं फील करता है। तो वास्तव में देखा जावे तो सच्ची जो स्वतंत्रता है वो सच्ची स्वतंत्रता है अपनी मानसिक स्थिति की। हमारा मनोबल जितना जितना बलवान होता है उसके आधार पर जो भी परिस्थितियां हैं उसका मुकाबला हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और उनका मुकाबला करके हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मनुष्य आत्माओं का मनोबल गिर गया है, उसके लिए मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। तो जितना जितना हम अपने मन को सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ लगाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आने दो, कोई भी आदत होवे, हम उससे सहज छूट सकते हैं। आज हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1 लाख युवा ऐसे हैं जो निर्व्यसनी, जिन्होंने सारे व्यसनों से मुक्ति प्राप्त किया है, स्वतंत्रता प्राप्त किया। तो इसके लिए मेडिटेशन की और ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। जिस समय हम उसका अध्ययन करते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है नरेंद्र भाई,
जी
क्योंकि स्वतंत्रता और परतंत्रता जो है ये मानसिक स्थिति है,
जी
फीलिंग्स है ये कि हम स्वतंत्र है या परतंत्र है। अगर हमारा मन स्वतंत्र है तो सब कुछ स्वतंत्र है, अगर हमारा मन बंधन में है तो सब कुछ बंधन में। तो इसीलिए पहले पहले तो मन को स्वतंत्र करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा समझती।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, जो बात आपने कही मन की स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता है। और भले ये कोरोना काल है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, बट अंदर से हमें स्वतंत्रता महसूस करनी है तो हम वो चीज कर पाएंगे। बहुत सारे दोस्त आपको ग्रीटिंग्स भी दे रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। मुनीष जी हमारे साथ, क्षमा करें, कल का एक प्रश्न था दीदी जो हमारे एक यंग फ्रेंड पूछ रहे थे, नाम है इनका देवव्रति। और देवव्रति ने प्रश्न पूछा है कि वो 19 साल के हैं और वो कहते हैं कि मैं सही से सो नहीं पा रही हूं और मेरा मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, और जब सोने का समय होता है तो मैं बीच बीच में उठ जाती हूं और सब कॉन्शियसली मैं उठकर बेड पे बैठती हूं और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो मैं क्या करूं, ऐसा देवव्रति पूछती हैं। ये स्लीप को ठीक करने के बारे में, नींद को ठीक करने के बारे में और अपने माइंड को जो डिस्टर्ब होता है उसे ठीक करने के बारे में पूछते हैं देवव्रति।
देवव्रति बहन पूछ रही है। अच्छा यंग है ना एकदम
जी,
तो ये आज का वातावरण देख के घबरा जाती है। वापस कहा जाता है जो सारा दिन देखते हैं, जो सारा दिन चिंतन करते हैं तो सोने के समय भी वही बातें सामने आती। तो इसीलिए हम तो इस बहन को यही कहेंगे कि आप बाहर देखने के बजाय थोड़ा सा समय निकाल के अपनी आंतरिक स्थिति को भी देखना सीख जाइए, खुद के लिए विचार करना सीख जाइए। हम बाहर की परिस्थिति और बाहर की व्यक्तियों के लिए ज्यादा सोचते हैं और खुद के लिए कमती सोचते हैं। वैसे भी आप देखेंगे तो घर में दो बातें होती है, दो चीजें होती है, एक होता है आईना और दूसरी होती है खिड़कियां, विंडोज। तो जब भी बाहर देखा, दूसरे को देखना होता है तो विंडो से देखते हैं और जब भी खुद को देखना होता है तो आईने में देखते हैं। तो आज लोगों के अंदर यही एक वृत्ति हो गई है, वो आईने में कम देखते हैं, विंडो में ज्यादा देखते हैं। तो जब दूसरों को देखते हैं बाहर देखने के बाद, कभी व्यक्तियां, कभी परिस्थिति, कभी ऐसे कोई सरकमटेंस होते हैं जिनको देख करके जी घबराता है और उसका फिर क्या होता है, चिंतन चलता रहता है। कभी किसी की बुराइयों का चिंतन चलता है, अवगुणों का चिंतन चलता है, परिस्थितियों का चिंतन चलता है। तो इसीलिए हमें ये भी करना चाहिए कि थोड़ा सा समय निकाल के, हम सारा दिन तो औरों से बातें करते हैं परंतु थोड़ा सा समय निकाल करके सवेरे का हमें खुद के साथ बातें करनी चाहिए और ईश्वर के साथ बातें करनी चाहिए। तो अगर हम ये करते हैं, खुद को देखना चालू कर देते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है जिसके कारण हमारे को इतनी तकलीफ होती, तो वो कमी हम जरूर निकाल सकते हैं। फिर जब जिस समय पर हम सोते हैं उस समय ईश्वरी याद में रह के अगर सोएंगे, ईश्वर को 2 मिनट आप याद करिए, सच्चे दिल से याद करिए और उसके गोदी में जाके सो जाइए, आपको ऐसी नींद आएगी आप एकदम सवेरे फ्रेश होकर के उठेंगे। आप संकल्पों में सोते हैं इसीलिए आपको नींद नहीं आती है, परंतु आप निर्संकल्प होकर सो जाइए तो आपको जरूर नींद आएगी, ये मेरा अनुभव।
जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, और आपने जैसे कहा कि यंग फ्रेंड्स हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है, इस वातावरण का प्रभाव उन पर आसानी से पड़ता है, और ऐसे में
निर्संकल्प होना, ये प्रैक्टिस करना कि भाई हम अपने थॉट्स को पहले कम करके फिर सोने का अभ्यास करेंगे, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, नाम है इनका रीता गुप्ता, और रीता जी कहती हैं कि अगर हमसे गलती हो गई और हमने माफी भी मांग ली लेकिन सामने वाले ने संबंध फिनिश कर दिया, वो रिलेशनशिप समाप्त कर देता है, तो हम क्या करें, ऐसा रीता जी पूछती हैं।
अभी रीता बहन, आपने कोई गलती किया और आपने माफी मांग लिया और फिर भी अगर वो आपसे संबंध नहीं रखना चाहता है तो मैं समझती हूँ आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। आप जब भी पतंग को ऊपर चढ़ाना होता है ना तो उसको ढीला छोड़ना पड़ता है, तो उसी प्रकार जब संबंधों को ठीक करना होता है तो थोड़ा समय उसको छोड़ देना पड़ता है। अगर छोड़ देंगे तो वो आप ही नजदीक आ जाएंगे, आप जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना वो दूर भागेगा। इसीलिए आप एकदम निरसंकल्प हो जाओ, आप छोड़ दो उस बात को, धीरे धीरे आप ही ठीक हो जाएगा। जो बातें हम नहीं ठीक कर सकते हैं वो बातें समय ठीक कर देता है, वो बातें ईश्वर ठीक कर देता है। इसीलिए ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, समय के ऊपर ध्यान रखिए और आप अपने ईश्वरीय मस्ती में रहिए और चलते रहिए, कोई बात नहीं। अगर माफ नहीं किया है तो भी बात नहीं, आपने तो माफी मांग लिया, बाकी उसने अगर माफ नहीं किया है तो ये उसकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी नहीं है। आप इसका चिंतन नहीं करो, आप प्रभु चिंतन करना सीख जाओ।
जी, बहुत ही अच्छी बात है दीदी आपने कही कि भाई एक बार जब हम माफी मांग लेते हैं तो हमने अपनी तरफ से काम पूरा किया है, फिर बाद में ईश्वर पर भरोसा करके चीजों को छोड़ देना चाहिए, लेट गो करना भी बहुत ही अच्छी चीज है आपने बताया। कल हमारे एक दोस्त थी, सुनंदा वर्मा नाम था इनका, और सुनंदा जी का प्रश्न था जो एकदम आजकल के मॉडर्न जमाने से जुड़ा हुआ है, जो आजकल चल रहा है उससे रिलेटेड। वो कहती हैं कि आजकल बच्चों ने अपनी दिनचर्या ही ऐसे बना ली कि रात भर काम करना, मोबाइल और लैपटॉप लेकर बैठे रहना, फिर सारा दिन सोना, और समझाओ बच्चों को तो यही कहते हैं कि हमसे दिन में काम नहीं होता, ऐसे में कैसे समझाएं, ऐसा सुनंदा जी पूछती हैं।
अभी ये जो सुनंदा बहन है, ये प्रॉब्लम इसका नहीं है, आज बहुत सारी माताओं का ये प्रॉब्लम है
जी।
बच्चों के कारण ही माताओं के आगे प्रॉब्लम आता है ना
जी। जी,
तो अगर बच्चों को हमारे को सीधी लाइन पर चलाना है तो उसके लिए हमें खुद को पहले चलना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो माता पिता है उनका भी ज्यादा समय लैपटॉप, ये मोबाइल, फेसबुक, इन बातों में जाता है। तो जब साधनों की हमें ही रुचि होती है तो आप तो अच्छी बातें देखते होंगे, परंतु बच्चों को आजकल के जमाने के अनुसार उनको दूसरी बातें भी अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए थोड़ा हम जब स्वयं पर कंट्रोल करते हैं, हमारे इस विद्यालय में ये समझाया जाता है, शिक्षा दी जाती है कि स्व परिवर्तन से हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिवार का भी, अगर बच्चों का भी परिवर्तन करना है तो हमें खुद को परिवर्तन होने की आवश्यकता है। आज बच्चे समझाने से समझेंगे नहीं, आपके बोलने से वो सुनेंगे नहीं, आपके कर्मों को देख करके वो सीखेंगे, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं हमको देख के वो फॉलो करते हैं, उनमें फॉलो करने की एक टेव होती है, उनके अंदर ये होता है कि हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सामने रख के, और फिर वैसे ही वो कर्म सीख जाते हैं। फिर उसमें कोई खराबियां भी आ जाती, आप अच्छी अच्छी बातें देखते होगे, वो उल्टी बातें देखेंगे, फिर अपना समय बर्बाद करते हैं, ये होता है। इसीलिए ज्यादा अपने को टेंशन दे करके और अपनी स्थिति को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा खुद के ऊपर अटेंशन रख के और वातावरण को ठीक करने की आवश्यकता
है। जी, बहुत ही अच्छी बात दीदी आपने ये बात कही कि बच्चे हमसे देख के करते हैं, बट वातावरण को अच्छा और शक्तिशाली बनाना भी जिस पर हमें काम करना चाहिए। हमारे साथ फेसबुक पे लाइव जुड़े हैं श्रीनिवास राजू जी। श्रीनिवास जी कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ, बट मेरे माता पिता भारत में रहते हैं। मैं साल में दो बार उनसे मिलता जरूर हूँ, मगर फिर भी ये जब से ये लॉकडाउन वगैरह हुआ है इस समय में, तो आई एम मिसिंग देम अलॉट। वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस करते हैं ऐसा कहते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बहुत फील करता हूँ इस मामले में। और रिसेंटली मैं ब्रह्मा कुमारी में जाना मैंने शुरू किया है, ऐसे श्रीनिवास जी कहते हैं।
श्रीनिवास कहता तो ठीक है, मिस तो जरूर करता होगा अपने माता पिता को, परंतु अगर वहाँ अभी अटक गए हैं, क्योंकि सरकमटेंस ऐसे हैं, तो जो जहाँ है वहीं फंस गए, अगर वहां पर फंस गए हैं तो क्या कर सकता है। परिस्थिति ऐसी परिस्थिति के आगे तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी दो ही बातें हो सकती है, एक तो अगर हमारे को पैसा कमाना है तो उधर जाना ही पड़ेगा, इसी के लिए नौकरी के लिए जाते हैं ना, तो फिर कुछ छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोभ छोड़ना पड़ेगा। लोभ छोड़ो तो साथ में रहो, मोह छोड़ो तो जाकर के कमाई करो, तो कुछ तो जरूर करना ही पड़ता है। आप दोनों हाथों में दो लड्डू पकड़ना चाहते हैं श्रीनिवास जी, इसीलिए आपको तकलीफ होती है और कुछ नहीं। बोलिए
जी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि ये स्वाभाविक चीज है श्रीनिवास जी, आपको इसे माइंड नहीं करना चाहिए। और ऐसा होता है कि हम अपने प्रियजनों को मिस करते हैं, और बहुत बार हमारे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे दीदी ने कहा कि हमें नौकरी करनी पड़ती है, पैसे कमाने के लिए हमें जाना पड़ता है कहीं दूर देश, तो आप गए हैं तो इस चीज को माइंड नहीं करें। बट अगर आप ये याद रखें कि आप उनको मिस कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम परिवारजनों को याद करते हैं। दीदी अगला प्रश्न एक हमारे दोस्त पूछते हैं, ये थोड़ा आध्यात्मिक प्रश्न है, और नाम है इनका मुनीष जी। और मुनीष पूछते हैं कि ईश्वर से साक्षात्कार कैसे करें, ये प्रश्न पूछते हैं। सीधा ही छोटा सा प्रश्न है, और वो कहते हैं कि कैसे संभव है ईश्वर से साक्षात्कार। ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं मुनीष।
देखो मुनीष, मुनीष जी, मुनीष भाई क्या कहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करें? आप देखेंगे तो आत्मा जो है इस शरीर में, वो भी ना आंखों से नहीं देख सकते हम, उसको दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है। वैसे ही परमात्मा पिता को भी दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। तो हमें अगर देखना है अपनी दिव्य दृष्टि से, उसको अगर देखना है तो उसके लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। तो जितनी जितनी हमारी बुद्धि जो है वो प्योर होती जाती है, जितनी जितनी बुद्धि हमारी साफ होती जाती है, तो दिव्य बुद्धि के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको अनुभव करते हैं कि हम उसको देख रहे हैं। जैसा देखो आत्मा के लिए गायन करते हैं, भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा, आत्मा एक सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, निवास करती है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो देखी नहीं जाती है, पर फील की जाती, अनुभव की जाती है। आप जैसा देखेंगे फूल है, फूल की जो सुगंध है वो दिखाई नहीं पड़ती है पर अनुभव की जाती है। तो उसी प्रकार परमात्मा को इन नेत्रों से देखा नहीं जाता है, परंतु उसके साथ हमारा जो गहरा संबंध है, वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, ये जो हमारा स्नेह का संबंध है, इसका हम ज्ञान के आधार पर अनुभव कर सकते हैं। बाकी देखने से कुछ फायदा होगा ऐसा नहीं है, देख भी लेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर को देखने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसके लिए उसको पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, डिग्री लेनी पड़ती है। तो उसी प्रकार परमात्मा को इन आंखों से देखे या नहीं देखे, क्योंकि इन आंखों से देखने की वो चीज नहीं है, परंतु वो अनुभव करने की चीज है। तो जिस समय हमारे को ये अनुभव आता है कि परमात्मा पिता जो है उसके साथ हमारे सर्व संबंध है, इसीलिए गायन करते हैं तो हमें वो माता पिता बंधु सखा, तो ये सारे संबंध जो है, इस ये संबंध जोड़ना और उससे अनुभव करना, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। वो समझने के बाद देखा माना हमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया, वो हमें खुशी होती है।
जी बहुत ही बहुत अच्छी बात आपने कही कि साक्षात्कार कैसे संभव है। जैसे ये बहुत ही बड़ा मुश्किल सा प्रश्न लग रहा था, बट बड़ी सरलता से आपने उसका उत्तर दिया दीदी। मैं आशा करता हूँ मुनीष जी को ये उत्तर पसंद आया होगा। अगले हमारे दोस्त हैं शुभा चंद्रिका। शुभा जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो पूछते हैं यूट्यूब से, हाउ लॉ ऑफ कर्म वर्क्स फॉर सोल्जर्स लाइक सर्विंग द नेशन किलिंग एनिमीज, सो हाउ डज इट वर्क। शुभा जी पूछती हैं कि कर्म का सिद्धांत सोल्जर्स के लिए, जो सैनिक हैं जो देश की रक्षा करते हैं और फिर भी उनको शत्रुओं को मारना पड़ता है, तो उनके लिए कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, ऐसे शुभा जी पूछते हैं।
देखो अभी वो तो उनकी ड्यूटी है, अगर वो ड्यूटी नहीं करेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा। परंतु जैसा गीता में है कि अगर युद्ध के मैदान में मरेंगे तो तुम स्वर्ग में जाएंगे, तो युद्ध के मैदान में मरेंगे माना ईश्वरीय याद में, अगर तुम युद्ध के मैदान में भी शरीर छोड़ेंगे तो तुम जरूर स्वर्ग में जाएंगे, तुमको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, तुमको जरूर गति सदगति मिलेगी। तुम अपना जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को आप ईश्वरीय याद में रह करके पार करो, ऐसा नहीं कि आप देश की रक्षा को छोड़ दो। अगर ऐसा देश की रक्षा करना छोड़ देंगे तो उसकी रिजल्ट क्या होगी वो हमें सबको मालूम है। तो इसीलिए आप जो कर रहे हैं आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से बजाओ, आपको जरूर उससे प्राप्ति होगी।
जी दीदी, बहुत ही अच्छी बात आपने ये कही कि भाई सोल्जर्स का तो काम है कि वो अपनी ड्यूटी करें, अगर वो ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर देश की रक्षा नहीं होती है। तो इसलिए गीता का भी आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत ही अच्छी चीज है और मैं समझता हूँ एक गहरी बात है, इसको ज्यादा समय से समझा जा सकता है। दीदी, आप सुनंदा वर्मा जी के प्रश्न के लिए उत्तर दे रहे थे, आप कह रहे थे कि बच्चों को हम कैसे इंस्पायर करें कि वो रात को जल्दी सोएं और रात भर कंप्यूटर पे और मोबाइल पे ना लगे रहें। सुनंदा जी ने उसके जवाब में एक और छोटी सी बात पूछी है, वो कहते हैं कि हमारे कर्म तो उन्हें देखने का समय ही नहीं है ना, हम जागे तो वो सोते हैं, वो सोते हैं तो हम जागते हैं, क्योंकि बच्चे रात को जाग के काम कर रहे हैं तो वो हमारी तरफ देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उनका हमारी तरफ, ऐसा वो कहते हैं।
आप थोड़ा उनको ज्यादा अच्छी पालना देंगे तो जरूर देखेंगे। अगर माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं पहले से ही, परवरिश ऐसी देते हैं तो वो भी बच्चे भी माता पिता का ध्यान रखते हैं। अगर हमारा ध्यान थोड़ा कम होता है तो नेचुरल है बच्चों का ध्यान भी कम होता है। अगर हमें उनका दर्द पहले नहीं फील होता है तो उनको भी हमारा दर्द फील नहीं होता है। सुनंदा जी को बोलिए जरा खुद को थोड़ा चेक करे तो उसका जवाब उसको खुद को मिलेगा कि हमारी परवरिश में कौन सी कमी है जिसके कारण वो ऐसा कर रहे, हमारी पालना में ऐसी कौन सी कमी है। अगर हमारी पालना में कुछ कमी रह जाती है तो उसकी रिजल्ट आती है। तो किस रीति से उनको पाला है, क्या किया है वो थोड़ा, क्योंकि आजकल क्या हो गया है सबकी बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, तो फास्ट लाइफ के कारण इतना बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, सब अपने अपने में बिजी है, फिर बच्चे बड़े होने के बाद वो अपने में बिजी हो जाते हैं, फिर फील होता है माता पिता को अरे ये तो हमको देखते ही नहीं, ये तो हमको ये। परंतु पहले हमको ये पूछना चाहिए कि हमने उनको कितना देखा है, तो ये थोड़ा विचार करने की बात है।
जी मैं बहुत ही अच्छी बात आपने जो बात कही दीदी, मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार हमें आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। बच्चे जिस तरीके से परवरिश से हमारे साथ आगे बढ़ते हैं कभी कभार उसका असर बहुत गहरा होता है बच्चों पर, जिस कारण से कभी कभार वो डिस्टेंस होता है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो उन चीजों को सॉल्व
बताते हैं ना, देखो बताते हैं माता पिता कितने बिजी होते हैं। एक बच्चा है बेचारा, उससे बात कर, छोटा बच्चा है उससे बात करने को माँ अपने कामों में बिजी है, पिताजी अपने लैपटॉप लेकर के बैठा हुआ है उसमें बिजी है, वो कभी बात भी नहीं करता है उससे, उसको समय नहीं मिलता है क्योंकि उसको तो पैसे की पड़ी है तो उसको समय नहीं मिलता है। फिर वो एक दिन वो छोटा सा बच्चा पिताजी से पूछता है पिताजी आप जो इतना काम करते हैं तो आपको एक घंटे का कितना मिलता है, तो बोला हमारे को एक घंटे का 1000 रुपया मिलता है, तो बोला आप ये 1000 रुपया मैंने खर्ची का जो आपने मेरे को खर्चने के लिए दिया ना वो मैंने अपने पास इकट्ठा करके रखा है, आप ये 1000 रुपया लो और आप 1 घंटा मेरे को दो, आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ है। हमारा बड़ों का ही डिफेक्ट है
जी,
आप उनको दोष नहीं देना बेचारों।
बहुत ही अच्छी बात आपने रियलाइज कराई दीदी कि बच्चों के लिए टाइम देना कितना इम्पोर्टेंट है, उनके साथ बैठना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर वो करते हैं तो बहुत कुछ हम ठीक कर सकते हैं। और अभी भी
लोग खुश होते हैं ना, अभी लोग खुश होते हैं कहते हैं अरे अच्छा हो गया ये लॉकडाउन हो गया, हम कम से कम अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को तो टाइम दे सकेंगे, इतना दिन तो हम कभी टाइम ही नहीं दे सकते थे, तो अभी दो टाइम नहीं दिया तो दो, तुम टाइम देगे तो वो तुमको टाइम देगे, तुम नहीं देगे तो वो भी नहीं देगे।
बहुत ही सिंपल सा फंडा आपने समझाया कि भाई अगर आप वो देंगे तो वही चीज आपको मिलेगी भी। ये स्पिरिचुअल लॉ भी कहता है कि जो चीज आपको चाहिए वही चीज आप दीजिए भी। दीदी अगला प्रश्न रजनी जी हमारे साथ पूछती हैं, रजनी कपूर नाम है इनका, और रजनी जी फेसबुक पे लाइव देख रही हैं प्रोग्राम को, और वो कहती हैं कि दीदी जी मेरे साथ कुछ अच्छा या बुरा होना होता तो मुझे फील हो जाता है और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी सामने आ जाते हैं, उसके फायदे क्या हैं, बुराई क्या होने वाली है, किसी भी घटना के अच्छे और बुरे को भी मैं पहले से ही भांप लेती हूँ, और ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, इसकी वजह से उनको थोड़ा हिचकिचाहट से महसूस होने लगती है कि भाई मुझे पहले से फील हो रहा है, ऐसा लोगों के साथ नहीं होता बट मेरे साथ होता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा रजनी पूछती है।
अच्छा है ना, पहले से ही अगर मालूम हो जाएगा तो, अगर बुरा होने वाला होगा तो सावधान हो जाएगी, अगर अच्छा होने वाला होगा तो पहले से ही खुश हो जाएगी, इसमें हिचकिचाहट की क्या बात। अगर हमको मालूम पड़े तो हम तो खुश हो जाए, अच्छा हो गया हमको पहले से ही मालूम है हा? और अगर बुरा होने वाला है पहले से सावधान हो जाइए, और क्या है इसमें संकल्प उठाने की कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ये, खराब बात नहीं है कोई, वो समझती है ये औरों से नहीं होता है मेरे से क्यों होता है, आप विशेष आत्मा इसीलिए आपसे होता है।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी। रजनी जी देखिए, दीदी जी ने आपको ये बात कही है कि ये आपकी स्पेशलिटी है, इसे घबराना नहीं है और इसे पॉजिटिवली यूज करना है, ये जो आपके पास ये कला है या ये आपके अंदर ये जो एबिलिटी है इसको आप अच्छे से यूज करें और पॉजिटिवली करेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, दूसरों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। अगले प्रश्न पर मैं जाऊं उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता देता हूं, हम लगभग 27 मिनट पर आ चुके हैं और हम एक घंटे का प्रोग्राम करते हैं, तो जिन दोस्तों ने सवाल पूछे हैं उनके सवाल मैं ले रहा हूं। अगर आप दोस्तों को कुछ सवाल पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे, यूट्यूब पर, जहां पर भी आप देख रहे हैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों को हम लाइव फीड पर दिखाएंगे। आप हमें शाउट आउट दे सकते हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये फील कर सकते हैं, या कुछ फीडबैक है या कोई भी फीलिंग आपकी है जो आप हमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलता हूं दीदी। अगले प्रश्न पर हमारे साथ दृष्टि हैं। दृष्टि जी हमारे साथ यूट्यूब से जुड़ी हैं। वो कहती हैं कोई डिप्रेशन में है, हम जानते हैं कि उसे प्यार की आवश्यकता है लेकिन वो परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि दो बार प्यार से बोलेंगे फिर हमें भी गुस्सा आ जाता है और सारे घर में अशांति हो जाती है, ऐसे में क्या किया जाए, ये पूछते हैं दृष्टि।
अभी दृष्टि को ये मालूम पड़ता है कि दो बारी बोलने के बाद तीसरी बारी हमको गुस्सा आता है और उसके कारण वातावरण बदलता है। अभी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डिप्रेशन बीमारी है, तो बीमार के ऊपर गुस्सा नहीं किया जाता है, उसके ऊपर रहम किया जाता है, उसके ऊपर प्यार किया जाता है। आप जितना जितना उसके ऊपर प्यार उसको देगी, जितना जितना उसके ऊपर रहम करेगी उतना उतना वो जल्दी ठीक हो जाएगी, बाकी आप गुस्सा करेगी तो वो और भी डिप्रेशन में जाएगी। तो ये क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, उसके वश की बात नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है, उसकी बीमारी है, तो बीमार के ऊपर हमेशा रहम करना चाहिए, उससे उसको ज्यादा स्नेह देना चाहिए और उसको बिजी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, हमने देखा है जो डिप्रेशन वाले होते हैं ना, कुछ काम नहीं करते, बैठे रहते हैं ऐसे, तो कहा जाता है ना खाली मन शैतान का घर, तो खाली बैठने के कारण क्या होता है, उनको ज्यादा संकल्प चलते हैं, वो ज्यादा ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। तो आप उनको बिजी करने का सोचो कि हम किस रीति से बिजी करें, चाहे घर के काम में बिजी करो, उसको जिसमें इंटरेस्ट होवे, पहले जिसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट नहीं होगा उसको किसी में, परंतु प्रेम प्यार से उसको बिजी करने की अगर कोशिश करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसको जो प्रिय लगते होवे उनको बुलाओ, उनसे उसका मन का थोड़ा हल्का कराओ, तो उससे मैं समझती हूँ ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं कभी कभी
जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ। राजू यादव हमारे साथ जुड़े हैं और राजू जी का प्रश्न है कि आजकल कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं और हर सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहें और सोचें, प्लीज गाइड, ऐसा कहते हैं। राजू जी का प्रश्न इसलिए भी वैलिड है दीदी क्योंकि आजकल समय ऐसा होता जा रहा है कि सिचुएशन बाहर का थोड़ा अनसर्टेनिटी है, हमें पता नहीं है कि समय कैसे ठीक होगा, कब परिस्थितियां नॉर्मल होंगी, तो कुछ भी सोचते हैं तो प्रॉब्लम आती है तो नेगेटिव ही सोचा जाता है। ऐसे में हर सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहें और पॉजिटिव कैसे सोचें, ऐसा राजू पूछते हैं।
देखो राजू भाई, निगेटिव ही सोचा जाता है ऐसी बात नहीं, कैसा परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं, पर सोचना तो मेरे हाथ में, सोचती तो मैं हूं ना, आत्मा सोचती है ना, मन सोचता है, तो वो तो मेरे हाथ में ना, जो मेरे हाथ में बात है उसको मुझे कंट्रोल करना। हमेशा कहा जाता है आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएगी। आप अगर निगेटिव सोचेंगे तो आपके सामने निगेटिव ही आता रहेगा, परंतु आप निगेटिव को पॉजिटिव वे में अगर ले लेंगे, जो बुराई है उसको भी अगर आप अच्छाई में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप टेंशन से फ्री हो जाएगी। नहीं तो निगेटिव सोच सोच के टेंशन आता है ना, फिर क्या होगा, पता नहीं आगे चल के क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अभी हमेशा कहा जाता है बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना ना है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, कोई भी अनहोनी होने वाली नहीं है। और आप अगर भगवान के ऊपर विश्वास रखते हो तो ये आप अंदर में पक्का कर लो कि हमारा जो साथी है वो सर्वशक्तिवान है, वो स्वयं भगवान है। कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको ये परिस्थिति के आंधी और तूफान क्या करे। और आप फिकर नहीं करो, अगर आप सच्चे दिल से उसको याद करते हो, आपका कनेक्शन अगर उस बुद्धि का कनेक्शन उसके साथ ठीक है, तो आप ये याद रखना आपको कभी भूख नहीं मरने दे, आपको ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी जो आपको सोचना पड़े, घर के बच्चों के लिए या खुद के लिए सोचने की जरूरत नहीं। हमारा काम है पुरुषार्थ करना, हमारा काम है उसके लिए मेहनत करना, बाकी उल्टा नहीं सोचना। हमेशा आप पॉजिटिव सोचना सीख जाओ, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो निगेटिव आपके निकलता जाएगा और आपके जीवन में खुशी आएगी, क्योंकि निगेटिव सोचने से जीवन में गम आता है, दुख होता है, और जिसके कारण आत्मा की शक्ति और भी हीन होती जाती है। शरीर के ऊपर भी उसका निगेटिव का असर होता है और आत्मा के मन के ऊपर भी उसका असर होता है, तो इसीलिए पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है। और आप अगर ये पक्का कर लेंगे कि मुझे निगेटिव सोचना ही नहीं है और मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कोई भी परिस्थिति आएगी तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जब हम इतना स्ट्रांग होकर के बैठ जाते हैं तो हमारा सचमुच कभी भी बिगड़ता नहीं, सदैव अच्छा ही होता है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि कुछ भी हमारा नुकसान नहीं हो सकता, अगर ये पॉजिटिव थॉट रखें हमारे दिल के अंदर तो फिर तो कोई भी ऐसी चीज, नेगेटिव थॉट हमें आने ही नहीं देगी, और ये चीज हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड करने की जरूरत है। अगला प्रश्न एक और हमारे दोस्त पूछते हैं, धन गुरु नानक देव जी इनका नाम है, और ये प्रश्न पूछते हैं कि ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, इसमें हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और इन चीजों पे अपना फोकस कम करें और मेडिटेशन पे अपने फोकस को बढ़ाएं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ये पूछते हैं। क्योंकि आजकल सारी ही चीजें लॉकडाउन में, बच्चों का स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है तो बच्चे मोबाइल पर या लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बहुतों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वो लोग भी लैपटॉप पे ही दिन भर काम करते हैं, और जो लोग सीनियर सिटीजन इत्यादि हैं जो घर से बाहर पहले वॉकिंग इत्यादि के लिए जाते थे वो लोग भी अभी नहीं जा सकते, घर के अंदर ही रहना पड़ रहा है, तो वो लोग भी टीवी लगभग पूरा दिन चलता है, तो ऐसे में हमारा फोकस इन्हीं स्क्रीन्स पर है, तो इससे हटाकर मेडिटेशन का फोकस इम्प्रूव कैसे करें, ये पूछते हैं।
देखिए गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी वाना
जी,
वास्तव में देखा जावे तो ये जो भी साधन है ये साधन सुख के लिए, ये साधन जो है ये कार्य फास्ट हो गए उसके लिए, तो इन साधनों को यूज करो, परंतु सीमित जितनी आवश्यकता है, जितना उससे कार्य लेना है उतना यूज करो। सारा दिन अगर उन साधनों में पड़े रहेगे तुम, तो ये साधन तो कभी तुम्हारे को छोड़ने वाले नहीं, ये तो चिपक ही जाएगा। तो अपना समय इन साधनों के पीछे वेस्ट करने के बजाय जितनी आवश्यकता है उतना यूज करो, बाकी इन साधनों से थोड़ा दूर रहने से फायदा ही है। हम देखते हैं जो सारा दिन, क्योंकि टीवी में इसमें सब में क्या आता है, यही इतने उधर मर गए, इतने इतने बीमार हो गए, ये हो गए, वो देख देख के और सुन सुन करके क्या होता है, और ही लोगों के मन के ऊपर इफेक्ट होता जाता है। नहीं बीमार पड़ने वाले हो गए तो भी बीमार पड़ते हैं, इतना डरते हैं। तो इसीलिए ऐसी निगेटिव बातें देखने में अपना समय बर्बाद करने का उससे तो नहीं देखना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उससे जो आपको ऑफिस का काम देना है, जो पढ़ाई पढ़नी है बच्चों को, वो जरूर यूज करना है, यूज करने के लिए ये साधन है। परंतु यूज करते करते साधनों को अपने अधीन करके चलो, हमको साधनों के अधीन होने की आवश्यकता नहीं, ये ध्यान में रखो। मनुष्य क्या करता है, साधनों को यूज करते करते फिर साधनों के अधीन हो जाता है, उन साधनों के बगैर चल ही नहीं सकता है, उसके बगैर उसका काम ही नहीं चलता। तो अच्छा देखते देखते फिर नेगेटिव भी देखते हैं, तो जिसका और ही उल्टा असर होता जाता है। तो इसीलिए जितनी आवश्यकता है उतना देखो, पढ़ाई जिनको पढ़नी हो पढ़ाई पढ़ो, बाकी वेस्ट देख करके अपने मन को खराब करने की जरूरत नहीं।
जी, जैसे आप ये बात कह रहे थे मेरे को वो बात याद है, अंग्रेजी में कहावत है कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, यानी जो साइंस के साधन आपके पास हैं वो बहुत अच्छे सर्वेंट्स बन सकते हैं आपके लिए अगर आप उसको अच्छे से यूज करो, बट अगर आप उसका एक्सेसिव यूज करने लगेंगे, उसी पर डिपेंडेंट होते जाएंगे, तो फिर वो बैड मास्टर हो जाएंगे, आप उनके कब्जे में आ जाएंगे, काबू में फंस जाएंगे इन चीजों के। तो ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दीदी जी ने बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया। दीदी अगला प्रश्न संतोष पूछते हैं हमारे साथ। संतोष जी का प्रश्न है, ओम शांति दीदी, मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ और कभी कभी मिस होता है और फिर से टाइम लगता है कंसिस्टेंसी में आने में, तो कंसिस्टेंसी कैसे रखें और अगर मेडिटेशन मिस हो जाता है तो क्या करें, ऐसा संतोष जी पूछते हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं।
अच्छा, अभी बात ऐसी है भाई, कभी मिस होता है कभी करते हैं। अभी भोजन तो कभी मिस नहीं होता हमारा, स्नान करना भी मिस नहीं होता है, ऑफिस जाना भी मिस नहीं कर सकते हैं, हम उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि अगर ये बातें सब मिस कर डालेंगे तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो उसी प्रकार हमें मेडिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है ये समझने की आवश्यकता है। जब ही किसी भी चीज की वैल्यू को हम जान लेते हैं, वैल्यू को जानने के बाद ही हम उसको यूज अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मेडिटेशन से जो जो फायदे होते हैं ये जब हमारे को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो हमें जरूर टाइम मिलता है, मिस नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि सवेरे का जो समय है वो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा नींद का त्याग जरूर करना पड़ता है, क्योंकि त्याग के बगैर तो भाग्य नहीं मिलता है, कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। अगर सवेरे थोड़ा जल्दी उठ करके आधा घंटा भी आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो सारा दिन उसकी लिंक बनी रहेगी आपके पास, आप उसको ठीक कर सकते हैं। परंतु थोड़ा आलस को छोड़ करके, थोड़ी निंद्रा जीत बन करके आप मेडिटेशन करना सीख लो तो कभी भी मेडिटेशन आपका मिस नहीं होगा। बाकी दिन में तो फिर अनेक कार्य होते हैं, उसमें बिजी हो जाते हैं तो फिर मिस हो जाता है, ऐसी बात है। जैसा दूसरा कार्य हम दिनचर्या बना करके रखी है ना कि हमारी दिनचर्या कैसी होगी, कितने बजे उठेंगे, स्नान करेंगे, तैयार हो गए, जैसी ये स्थूल दिनचर्या बनाइए ना, वैसे अपनी मन की भी थोड़ी दिनचर्या बना डालेंगे तो आपका कभी भी मेडिटेशन मिस नहीं होगा। फिर कार्य करते भी आपकी बुद्धि परमात्मा के साथ लगी रहेगी।
जी, कंसिस्टेंसी के लिए आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया दीदी, जैसे हम भोजन इत्यादि को अपने लाइफ का एक हिस्सा बना चुके हैं, तो मेडिटेशन को भी अपने लाइफ का पार्ट बनाएं। अगर आप सुबह मिस करते हैं तो दिन में कभी करें, अपने शेड्यूल में उसे फिट इन करने की कोशिश करते हैं तो उसकी दिनचर्या में अगर आप इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ। राजेश विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, फेसबुक से वो लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को, और वो पूछते हैं हाउ टू नो इफ गॉड हैज रिसीव्ड अवर प्रेयर्स एंड हाउ टू कैच हिज डायरेक्शंस। राजेश जी का प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है दीदी। वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंची हैं और भगवान हमें कुछ दिशा निर्देश दे रहा है, कुछ डायरेक्शन दे रहा है। वो कैसे हम कैच करें कि हाँ भाई भगवान ही हमें ये चीज डायरेक्ट कर रहा है, कोई हमें सॉल्यूशंस दे रहा है।
भगवान ने हमारी, राजेश भाई, राजेश है ना,
राजेश जी,
राजेश, तो राजेश भाई, भगवान के पास हमारे संकल्प पहुंचते हैं। हम लोग, आपके पास तो छोटी टीवी होगी, उसके पास वो बोलता है मेरे पास बहुत बड़ी टीवी है, तुम्हारी टीवी पर तो दृश्य दिखाई पड़ते हैं पर मेरी टीवी में तुम्हारे संकल्प भी दिखाई पड़ते। तो हम जैसे संकल्प करते हैं, अगर हम सच्चे दिल से उसको याद करते हैं तो वो याद उसके पास पहुंचती है। सिर्फ दिमाग से याद करेंगे तो वो याद नहीं पहुंचती। आप कहेंगे दिमाग की याद क्या होती है, दिमाग की याद माना परमात्मा है, वो सर्वशक्तिवान है, ऐसा सिर्फ हम बोलते रहेंगे और याद कर, नहीं, उसके साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है, वो मेरा पिता है और मैं उसका बच्चा हूं। तो ये जो संबंध है उसके साथ, संबंध जोड़ करके अगर हम उसको याद करते हैं तो वो याद उसके पास पहुंचती है। और हम जो भी हमारा प्रश्न होता है, जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है, अगर वो हम उसके सामने रखते हैं तो उसका जवाब भी हमको जरूर मिलता है। वो तो निराकार है, तो हमारी बुद्धि की लाइन अगर क्लियर होगी तो हमारे को वो क्या करता है, टच करता है, हमको ख्याल आता है, संकल्प आता है, ये बात ऐसा करनी चाहिए, ये बात ऐसा करना चाहिए। आज हम आध्यात्मिक, हम खुद के जीवन में देखते हैं बहुत बातें होती है, पर जब भी कोई बात होती है तो हम सवेरे अमृत वेले उठ करके परमात्मा पिता के सामने वो बात रखते हैं कि ये बात है, हमें क्या करना है। तो जब ही हम उसके सामने रखते हैं तो हमको जरूर उसका रिस्पॉन्स मिलता है, अर्थात हमारी बुद्धि को टच होता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, और हम वो वैसा करते हैं तो प्रॉब्लम, वो बात हल हो जाती। तो परमात्मा को जरूर पहुंचता है, सच्ची दिल पहुंचती है, कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर हमारा दिल सच्चा है तो साहब सदैव हमारे पर राजी रहता है और हमारे को उसके द्वारा सब डायरेक्शन मिलते हैं और हमको मालूम भी पड़ता है कि डायरेक्शन उसके द्वारा हमें मिल रहा है।
जी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही दीदी कि अगर हम क्लीन हार्ट से कोई चीज कहते हैं, सफाई के साथ कहते हैं, तो फिर वो ईश्वर तक पहुंचती भी है और हमें उसकी मदद भी एक्सपीरियंस होता है। अगला प्रश्न मेडिटेशन से ही जुड़ा हुआ है दीदी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं और ये भी प्रश्न पूछते हैं कि ये जो पैंडेमिक का समय चल रहा है, ऐसे समय पर मेडिटेशन के ऊपर फोकस कैसे करें, ऐसा ये प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि जितना हम देखते हैं कि हम नहीं भी चाहते सुनना किसी चीज के बारे में या न्यूज के बारे में, तो कोई ना कोई आके हमें बताने लगता है, घर में चर्चा होने लग जाती है, तो ऐसे टाइम पर हम मेडिटेशन पे फोकस कैसे करें इस पैंडेमिक के समय में, ऐसा गोपाल किशन जी पूछते हैं।
अभी आप सारा समय तो मेडिटेशन वैसे भी गोपाल जी नहीं कर सकेंगे, यहाँ मेडिटेशन तो समय के ऊपर ही करेंगे, परंतु हमें ये देखना है कि जितना हमारे काम की बातें हैं उतना अगर हम सुनते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खास एक स्लोगन बताया जाता है कि आप कम बोलो, सुनो भी कम, ज्यादा नहीं सुनो, ज्यादा सुनने से भी दिमाग खराब होता है, कम सोचो, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना आपकी सोच चलेगी, जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी शरीर की भी शक्ति खलास होगी। तो इसीलिए ऐसे समय पर हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जितना ईश्वरीय याद में रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि समय तो ऐसा चल रहा है, तो जितना जितना हम ईश्वर के साथ प्यार से उसको याद करेंगे तो हमारी इन बातों से बुद्धि आप ही अलिप्त होती जाएगी, ज्यादा व्यस्त सोचने के बजाय, ज्यादा व्यस्त सुनने के बजाय अपनी शक्ति को हमें व्यस्त नहीं करना है। आप अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें पढ़ो, तो जिससे क्या हो जाएगा, आपके अच्छे संकल्प चलेंगे, और अच्छे संकल्प चलेंगे तो फालतू जो संकल्प है वो स्वतः ही वेस्ट हो जाएगी, निकल जाएगी आप ही। इसीलिए खुद के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता। समय को मुझे बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना, टाइम इज ए मनी। मनुष्य के जीवन में टाइम ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, तो मुझे मेरा समय वेस्ट नहीं करना है, मुझे मेरा जो समय है उसको सफल करना। तो सफल हम तभी कर सकते हैं जब पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और फालतू बातों में अपनी बुद्धि को नहीं लगाते हैं।
जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। मैं समझता हूँ बहुत सारे दोस्त इस पर अटेंशन भी देने लगे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग पर। हमारा समय कहाँ जाता है इस पर भी अटेंशन देने लग गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, जो प्राइवेट नेचर के हैं, जहां पर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो ऐसे प्रश्न आप हमें पूछ सकते हैं socialmedia@ramakumaris.com पर। उन प्रश्नों को भी हम लेंगे, और जिन प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ ऑनलाइन नहीं ले पाते क्योंकि आपके क्वेश्चन का नेचर अगर थोड़ा सेंसिटिव है, तो उन प्रश्नों का उत्तर हम ईमेल के द्वारा भी देने की कोशिश करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स उन प्रश्नों का उत्तर प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप socialmedia@ramakumaris.com पर लिख सकते हैं, और इन प्रश्नों को मैं प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करता हूं, और आपके नाम को प्राइवेट गुप्त रखने की भी कोशिश की जाती है कि हम आपके नाम को नहीं रिवील करें। अगला एक प्रश्न है हमारे साथ, हमारी एक दोस्त जुड़े हैं, इनका नाम है कनक, और कनक जी का प्रश्न है, वो पूछती हैं, आई ऑलवेज टॉक पोलाइटली विथ अदर्स बट समहाउ आई कैन नॉट टॉक पोलाइटली विथ पीपुल हु आर सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। आई गेट वेरी इफेक्टेड एंड कैनॉट स्टैंड सच पीपुल हु आर सेल्फिश। हाउ डू आई चेंज माई सेल्फ एंड हाउ डू आई डील विथ सच पीपल। कनक जी सवाल पूछती हैं दीदी कि मैं सभी लोगों के साथ पोलाइटली बात करती हूँ, विनम्रता के साथ, मगर जब भी मेरे पास कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सेल्फिश हैं या वो अपने बारे में ही सोचते हैं, ऐसे लोगों के आसपास मैं पोलाइट नहीं रह सकती, और उस उनके वजह से मेरे पे ऊपर बहुत असर होता है ऐसे लोगों का जो सेल्फिश लोग होते हैं, और मैं बिल्कुल उनके आसपास रहना पसंद नहीं करती। मैं समझती हूँ मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, बट मैं कैसे अपने आप को बदलूं और ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करूं, ऐसा कनक जी पूछती हैं।
कनक जी, आप दूसरों की बुराई देख के अपनी अच्छाई क्यों छोड़ रहे हैं? अगर उनके अंदर बुराई है, उस बुराई में क्या इतनी ताकत है जो आपसे अच्छाई छुड़ा देते हैं? आप अपनी अच्छाई कभी भी छोड़िए नहीं। आज देखो, एक छोटी सी अगरबत्ती है, अगरबत्ती ये मनुष्य की रचना है। इतने बड़े हाल में अगर एक छोटी अगरबत्ती लगा देते हैं तो सारी बदबू गायब हो जाती है। अगरबत्ती कभी कंप्लेन नहीं करती है कि यहाँ बदबूएं हैं इसीलिए मेरी खुशबू नहीं फैल सकती। तो इसीलिए आप इतने स्ट्रांग हो जाइए, आप अपने अंदर अच्छाई को इतना भर लीजिए जो आपकी अच्छाई का असर उसके ऊपर होगी, उनकी बुराई का असर आपके ऊपर नहीं।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही जी जी बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया दीदी। मैं समझता हूँ ये जो इंसेंस स्टिक का, अगरबत्ती का आपने उदाहरण दिया है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें। ठीक है, लोग कैसे भी हों, बट अगर हम अच्छे हैं, ये बने रहेंगे, तो हमें बदलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे हैं, और किसी भी प्रकार के लोग आए उनके साथ आप अच्छे बने रह सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर था दीदी। संतोष उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं और वो बड़ा ही रोचक प्रश्न पूछते हैं। संतोष जी का प्रश्न है कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, भगवान को भी आराम मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं करते हैं भगवान, ऐसा पूछते हैं संतोष जी।
भगवान अच्छी मनोकामनाएं संतोष जी जरूर पूरी करते हैं, परंतु जो स्वार्थवश मनोकामनाएं वो पूरी नहीं करते हैं। आप उनसे सब कुछ कराना चाहेंगे भगवान से तो कैसा चलेगा? ये कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है, जो करेगा सो पाएगा। अगर भगवान करेगा तो भगवान ही पाएगा, फिर हम क्या पाएंगे? तो हमें पाना है, इसीलिए हमें अच्छा कर्म करना है, उसके रिजल्ट हमारे पास अच्छी आएगी, ये गारंटी। ठीक है
जी, बहुत ही अच्छी बात है दीदी, आपने बताया कि भाई भगवान ही सब कुछ नहीं करते, आपका भी अपना रोल है, आपका अपना कर्म बनता है जिसके आधार पर आपको फल मिलता है। वो अच्छी कामनाओं को जरूर पूर्ण करते हैं, बट हमारे अपने कर्म भी हमें करने हैं, इसकी वजह से सारी कामनाएं पूर्ण नहीं की जाती। एक हमारे दोस्त हैं श्रुति जी, और श्रुति जी हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं दीदी, और श्रुति जी का प्रश्न है कि रिजेक्शन ऑफ ओपिनियन, योर नेचर, योर थिंकिंग एक्सेट्रा, हाउ टू फेस रिजेक्शन विथ डिग्निटी। अगर कोई आपकी राय है या फिर आपका स्वभाव है या फिर आपके विचार हैं, इन चीजों को रिजेक्ट करता है, आपके विचारों को, आपके नेचर को, आपके आइडियाज को रिजेक्ट करता है, तो ऐसे समय पर हम उस रिजेक्शन को डिग्निटी के साथ कैसे फेस करें, ऐसा श्रुति पूछती हैं।
अभी। श्रुति जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छी बातें सामने वाले को सुनाते हैं, परंतु उसके और हमारे कोई संबंध ऐसे होते हैं, उसको हमारे लिए ऐसी कोई गलत फहमी होती है जिसके कारण उसको हमारी अच्छी बात भी खराब लगती है। जिसके साथ प्यार होता है उसकी खराब बात भी अच्छी लगेगी, और जिसके साथ प्यार नहीं होगा ना, उसकी अच्छी बात भी खराब लगती। तो इसीलिए हम पहले तो अपने संबंध को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आपसी संबंध हमेशा मधुर होने चाहिए, और एक दो के लिए अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो हमको दूर करनी चाहिए। ये जो होता है मनमुटाव जो होता है, और एक दो के लिए जो गलत फहमी होती है, इसका कारण यही होता है कि गलत फहमी को हम अपने अंदर दबा के रख लेते हैं। ये व्यक्ति है ही ऐसा, ऐसा जब हम अपने अंदर समझ लिया तो क्या होता है, हम उसी दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को देखते हैं और उसी दृष्टिकोण से उसके साथ बातचीत करते हैं। तो इसीलिए हमें आपसी संबंध हम कैसा ठीक करें, अगर हम खुद नहीं कर सकते हैं तो अगर किसी को बीच में भी दूसरे को डाल करके और जो भी गलत फहमियां हैं वो बैठ के अगर आपस में निकाल देते हैं तो मैं समझती हूँ ये बात ठीक हो सकती है। नहीं तो आपसी संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाते हैं, और हम अच्छी बात करते हैं उनको खराब लगता है, और वो भी अच्छी बात करते हैं हमको भी खराब लगता है, ऐसा होता है। क्योंकि दो हाथ से ताली बजती है बहन, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो हमारा भी कुछ गलती होती है, हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, और कभी कभी हमारे पूर्व जन्म का भी हिसाब किताब होता है, वो भी साथ में चलता रहता है। तो इसीलिए ज्यादा वो क्या समझता है, अगर ठीक कर सको तो जरूर ठीक करना चाहिए, अगर नहीं कर सको तो शांति से बैठो, आप ही ठीक हो जाएगा जो।
जी, ये बहुत ही अच्छी चीज है दीदी। बहुत बार हम सारी चीजों को ठीक नहीं कर सकते, अगर कुछ चीजें समय के अनुसार ठीक होती हैं और कुछ चीजों का हमारा अकाउंट है जिसे हम सेटल कर रहे होते हैं। एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, नाम है इनका मयूर, और मयूर जी प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट, प्लीज एक्सप्लेन दीदी, ऐसा वो पूछते हैं। प्रेम और अटैचमेंट के बीच में, प्यार और जो मोह का संबंध होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ऐसा ये पूछते हैं मयूर।
प्रेम जो है वो गुण है, और अटैचमेंट जो है वो विकार। प्रेम से फायदा है, अटैचमेंट से नुकसान। अगर हमारा एक दो के साथ प्रेम है, शुद्ध प्रेम, रूहानी प्रेम, तो उसमें फायदा ही फायदा होता है। प्रेम के तो लोग भूखे हैं ना, परमात्मा के लिए भी गाते हैं, तू प्यार का सागर है तेरे एक बूंद के प्यार से हम। प्रेम ये पत्थर को पानी बनाता है, इतना प्रेम में शक्ति है। परंतु जो मोह है, अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट ये हमारा जिससे अटैचमेंट होती है उसके तरफ झुकाव हो जाता है। आज देखो हम जैसा चल रहे हैं, चलते चलते अगर हमारा साड़ी का पल्लू किसी चीज से अटक गया तो मैं आगे जाएगी तो क्या होगा, वो मेरे को पीछे खींचेगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकेगी, मैं झुक जाएगी और कभी कभी गिर भी जाएगी। तो उसी प्रकार अटैचमेंट ऐसी है हमारी, जिसके साथ अटैचमेंट होती है ना, हम उसके आगे झुक जाते हैं, और झुक जाने के कारण उसकी अच्छाई बुराई हमारे को कुछ समझ में नहीं आती, और अटैचमेंट होने के कारण औरों को भी इस बात की फीलिंग आती है कि इसकी फलाने व्यक्ति के साथ अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट हमारे को अच्छा नहीं बनने देती। मोह को फांसी कहा जाता है, अटैचमेंट को फांसी कहते हैं, प्रेम को फांसी नहीं कहते। प्रेम ये तो बहुत अच्छा दिव्य गुण है, तो इसीलिए हमारे को जिसमें हमारा मोह होता है उसका जीवन परतंत्र होता है। आज समझो हमारा किसी में, हमारा समझो हमारी बहन में मोह है, अगर वो सुखी होगी तो मैं सुखी होगी, अगर वो दुखी होगी तो मैं दुखी होगी, अगर वो आनंद में होगी तो मैं आनंद में होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोह वाला ये परतंत्र है और प्रेम वाला ये स्वतंत्र है, उसको सामने वाले से कोई लेना देना नहीं है, वो सबके साथ प्यार करता है, प्यार लुटाता है और सदैव खुश रहता है। मोह वाला खुश नहीं रहेगा, मोह वाला पराधीन होगा। परतंत्रता में सुख नहीं कहा जाता है, उसको सुख कहाँ से बेचारे को मिलेगा, सारा समय तो दुखी होता रहेगा। इसीलिए अगर सुखी होना है तो मोह नहीं रखो, परंतु स्नेह करना, प्यार करना सीख जाओ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। लगभग हम एक घंटे के करीब पहुंचे हैं दोस्तों, मैं और ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बात करते करते दीदी जी ने इतने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और टू द पॉइंट जवाब मिले हैं, आपको क्या करना है एग्जैक्टली वो चीजें आपको मिली हैं, और दीदी जी के जीवन के अनुभवों से, उनके राजयोग की साधना से, उन्होंने अपनी गहरी अंडरस्टैंडिंग से आपको ये क्लियर विजडम और इंसाइट आपको ऑफर किया है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इसका बेनिफिट लेंगे। मैं आखिरी में दीदी दो प्रश्नों को एक साथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं दिलीप जी, जो पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमने मेडिटेशन में परमात्मा से कनेक्शन कर लिया है, हमारा बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा है, वो हम कैसे पता करें, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस लॉकडाउन में नए से मेडिटेशन सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेस किए हैं, तो इसके बारे में लोग बेहतर जानना चाहते हैं। और आखिरी प्रश्न जो है दीदी, वो गोपाल जी पूछते हैं कि हम कैसे अपने आप को दुनिया के प्रॉब्लम्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपने आप को कॉन्शियस रखें, ऐसा गोपाल जी पूछते हैं।
अभी बात ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं परमात्मा से, हमको कैसा, क्या बोला, कैसा मालूम पड़े, क्या कहा,
कैसे पता चले कि हाँ परमात्मा के साथ मेरा कनेक्शन जुट गया है अभी मेडिटेशन में, वो कैसे हमें पता चलेगा?
अगर परमात्मा के साथ मेरा कनेक्शन जुट गया है, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा शक्ति का सागर है, परमात्मा आनंद का सागर है, तो जब मेरा कनेक्शन उसके साथ जुट जाता है तो उसके जो गुण हैं उसकी मुझे अनुभूति होना चाहिए, हो जाएगी मेरे अंदर, वो शांति आती जाएगी, वो शक्ति मैं फील करती जाएगी, आनंद मिलता जाएगा, वो पवित्र संकल्प मेरे को आते जाएंगे, संघ का रंग लगता है, कनेक्शन माना संघ, तो परमात्मा निराकार है, साकार में नहीं संग कर सकते, बुद्धि से उसका संग होता है, तो जब हम उसके साथ बुद्धि का संग करते हैं तो उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन हमारे अंदर धीरे धीरे आती जाती है, हमारे जीवन में परिवर्तन होता जाता है, तो जितना जितना हमारे जीवन में परिवर्तन होता है तो ऐसा समझिए कि हमारा कनेक्शन ठीक जुटा हुआ है, हमारे को उससे आनंद की प्राप्ति होती है, प्रभु मिलन से तो आनंद की प्राप्ति होगी ना, वो हमारा माता भी है, वो हमारा पिता भी है, तो ये जो संसार की गर्माश है, तपत है, इससे हमारी बुद्धि दूर होती जाती है, हमारे को उसके उसके साथ संबंध जोड़ने से ठंडास आती जाती, आत्मा सुखी होती जाती, आनंद आता है उसको, उसके संग का रंग लगता जाता, कनेक्शन जुट जाएगा तो।
बहुत ही सुंदर दूसरा प्रश्न है दीदी, गोपाल जी हमारे साथ पूछते हैं, गोपाल नाम है इनका, और वो बोलते हैं कि हम कॉन्शियस कैसे रहें और अपने आप को वर्ल्ड के प्रॉब्लम से, दुनिया में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, ऐसा गोपाल पूछते हैं।
देखो कलयुग जो है गोपाल भाई, कलयुग है ही समस्याओं का युग। एक समस्या जाएगी तो दूसरी समस्या आएगी। अभी कोरोना की समस्या को तो आप सामने रखेंगे, ये जाएगी तो और कोई समस्या आएगी, वो जाएगी तो और कोई समस्या आएगी। परंतु जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, अभी गर्मी की सीजन या बरसात, अभी तो बरसात चल रही, बरसात की सीजन, अभी जब भी मैं घर के बाहर निकलती हूँ, मेरे को मालूम है बरसात गिर रही है, तो उस समय मैं क्या करेगी? रेनकोट या छतरी ले, मैं खुद को संभालेगी नहीं संभालेगी? तो मैं प्रकॉशन लेती हूँ ना उसके लिए। मैं बरसात को तो नहीं बंद कर सकती हूँ, उसको तो नहीं चेंज कर सकती हूँ, परंतु मैं खुद को तो सेव कर सकती हूँ। तो उसी प्रकार आप दुनिया का इतना झमेला सिर के ऊपर लेके घूमेंगे, इतनी समस्याएं इतनी समस्याएं, वो सोचने के बजाय अगर आप समस्याओं का समाधान जो ईश्वरीय याद है उस वो अगर आप कर लेंगे, ईश्वर के साथ अगर आप बुद्धि का योग जोड़ लेंगे और आप ये ठान लेंगे कि मुझे शांति के वाइब्रेशन सब तरफ फैलाने, ये जो इतनी समस्या, इन समस्याओं को हल करने के लिए पवित्रता और शांति की शक्ति चाहिए, वो मेरे को भर के वातावरण को ठीक करना है, मैं शांति दूत हूँ। ये अशांति है, यहाँ बहुत अशांति, वो तो सारी दुनिया को दिखाई पड़ रही है अशांति, आप नई बात क्या सुना रहे? परंतु उस अशांति में आप औरों को शांति दो, ये आपकी बहादुरी। तो इसीलिए आप खुद को प्रकाशन, खुद का प्रकाशन रखो, खुद का ध्यान रखो, खुद की सेफ्टी रखो। ऐसा थोड़ी बरसात गिरती आ रही, ये क्या है बरसात गिरती, फालतू बरसात गिरती है, बरसात नहीं गिरेगी तो अनाज क्या खाएगी तुम? बरसात को तो गिरना ही है ना, किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है, सबके साथ झगड़ा होता है उसका, प्रकृति के साथ भी झगड़ा। वो बरसात गिरेगी तो भी उसको नहीं अच्छा लगेगा, ठंडी आएगी तभी भी अच्छा नहीं लगेगा, गर्मी आएगी तभी भी चिल्लाते रहेगी, अरे इससे तो ठंडी के दिन अच्छे थे। अरे सब जो भी समय आया उसके साथ एडजस्ट होना सीख जाओ, जो भी व्यक्ति है उसके साथ एडजस्ट होना सीख जाओ। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये जो ईश्वरीय योग है, वो एडजस्ट होने की हमारे को कला सिखाता है, जीवन जीने की कला। तो जब हम ये सीख लेते हैं ना, तो फिर हर परिस्थिति में हम सेफ रहते हैं, औरों को भी सेफ कर सकते। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखो कि हमें खुद भी सेफ रहना है, औरों को भी सेफ करना है, पर पहले खुद को सेफ करो। इसीलिए औरों का या वातावरण का सोचने के पीछे नहीं भागो, पहले खुद को ठीक करेंगे, हमारा वातावरण ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम नहीं सुधरेंगे तो जग नहीं सुधरने वाले। तो जग को सुधारना है तो खुद को सुधर जाओगे हम, ठीक है
जी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्पष्ट विजडम आपने ऑफर किया दीदी, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के अंदर प्रकाश भरने की जरूरत है। समस्या है समस्या है ये बात करते रहने से या उसी मोड में रहने से हम चीजों को ठीक नहीं कर सकते। खुद को सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा। और ये बहुत ही अच्छी स्लोगन भी आपने बताई आज। बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है दीदी। प्रीति जी हमारे साथ एक व्यूअर हैं, वो कहती हैं कि दीदी जी ऐसे प्रोग्राम्स हफ्ते में कम से कम एक बार अगर आप करेंगे तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। टेंशन बहुत होता है और बहुत सारे लोग ऐसे समय में बाहर कोरोना के समय में कहीं ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर वगैरह विजिट करने से भी कतराते हैं, उनके लिए सेशंस बहुत हेल्पफुल होंगे, ऐसा प्रीति जी कहते हैं। गोपाल जी भी फीडबैक देते हैं कि आपने बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। विद्या जी भी, बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स हैं। दोस्तों फीडबैक्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं समझता हूँ मैं सारे फीडबैक्स भी लेने लगूँ तो काफी समय निकल जाएगा, बट हम एक घंटे के ऊपर आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं अभी आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन दोस्तों का मैं प्रश्न नहीं ले पाया हूँ, तूतू बासुमत्रे जी, और भी कुछ दोस्त हैं, गायत्री जी, कल्पना जी, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके प्रश्न मैं आज नहीं ले पाया हूँ। इन प्रश्नों को मैं कल लेने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बट आज आप सब लोगों ने इतने अच्छे से सवाल पूछे, अपने दिल के ख्याल हमारे साथ शेयर किए, हमें अपना दोस्त समझा और बेझिझक अपने दिल की बातें हमारे सामने रखी, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ संतोष दीदी जी खास मुंबई से जुड़े हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज के महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं, और इतने बिजी शेड्यूल में भी दीदी जी ने हमारे लिए समय निकाला और आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो आप सभी की तरफ से इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल एपिसोड में दीदी जी के आने के लिए मैं दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, आप हमारे साथ।
हमें भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल करके, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों ने पूछे, जितना हो सका उतना हमने आपको जवाब दिया, और भी अगर कुछ प्रश्न हो गए तो आप फिर बाद में भी पूछ सकते हैं। आप सभी को भी धन्यवाद है बहुत बहुत। ओम शांति।
थैंक यू सो मच दीदी। मैं आपसे अभी अनुरोध करता हूँ दीदी कि हर मास्टर ऑफ मेडिटेशन के साथ हम चंद मिनट मेडिटेशन करते हैं, और आप एक अकम्प्लिश्ड योगी हैं जिन्होंने इतने दशकों तक आपने राजयोग का अभ्यास किया है और लाखों लोगों ने आपसे मार्गदर्शन लिया है। तो ऐसे में हम आपसे चाहते हैं कि आप अगले 3-4 मिनट हम सबको मेडिटेशन कराएं, और आपके सानिध्य में हमारे सभी दोस्त मेडिटेशन करें आपसे।
ओम हम सभी देह से अलग भ्रुकुटि में स्थित होकर के मैं जो चेतन सत्ता हूं उस स्थिति में स्थित होकर के शरीर से मैं भिन्न हूं, शरीर के मेरा वस्त्र है, इस वस्त्र को धारण करने वाली मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मैं चेतन आत्मा पिता परमात्मा शिव की संतान, मेरा पिता निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव शांति के सागर, आनंद के सागर, शक्ति का सागर, मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव से शांति सुख